पृष्ठ संख्या 201। नवजागरण के इस युग ने बहुत से लेखकों को जन्म दिया। उनमें सबका उल्लेख विस्तार से यहाँ नहीं हो सकता, यद्यपि साहित्य निर्माण में उनका इतना हाथ है कि उनकी चर्चा न करना भी अनुचित ही होगा। मौलाना जकाउल्लाह ने लगभग 100 पुस्तकें लिखीं, जिनमें अधिकतर इतिहास और गणित से संबंध रखती हैं। वह बहुत बड़े विद्वान और लेखक थे, परंतु उनकी गद्य शैली में कोई विशेषता ना थी। मोहसिनुल मुल्क ने बहुत कम लिखा, लेकिन जो कुछ लिखा है वह बड़े उच्च कोटि का है। सैयद अली विलग्रामी संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, फ्रेंच और अन्य भाषाओं के बड़े विद्वान थे। उन्होंने फ्रांसीसी विद्वानों की दो प्रसिद्ध पुस्तकों का अनुवाद इस प्रकार किया कि वह स्वयं उन्हीं की लिखी हुई मालूम होती हैं। हैदराबाद में एक प्रतिष्ठित पद पर रहते हुए उन्होंने साहित्य की उन्नति के लिए बड़े रचनात्मक कार्य किए। मौलाना शिबली के मित्रों में मेहंदी इफादी थे, जिन्होंने थोड़े से निबंध और पत्र लिखे हैं, मगर वह इतने महत्वपूर्ण हैं कि गद्य के किसी इतिहास में उनको छोड़ा नहीं जा सकता। उनकी शैली बड़ी रोचक और रंगीन है। नासिर अली देहलवी, दिलगीर अकबरावादी और नज़ीर फिराक भी उर्दू गद्य के बड़े अच्छे लेखकों में गिने जाते हैं। उनकी बहुत कम रचनाएं प्रकाशित हो पाई हैं। जिस युग का उल्लेख किया जा रहा है उसमें उर्दू उपन्यास ने भी बड़ी उन्नति की थी। मौलाना नज़ीर अहमद के उपन्यासों का वर्णन हो चुका है और उनको प्रथम उपन्यासकार कहा भी जाता है, परंतु वास्तव में पंडित रतन नाथ सरशार और मौलाना अब्दुल हलीम शरर ने उर्दू उपन्यास को अंग्रेजी उपन्यास कला की दृष्टि से देखा। उपन्यास को यूरोप में भी वर्तमान युग की पैदावार कहा जाता है और वहाँ से भारत की अन्य भाषाओं ने ग्रहण किया। उर्दू में कहानियाँ बहुत लिखी जा चुकी थी, जिनमें से कुछ की चर्चा अपने अपने स्थान पर आ चुकी है, परंतु ऐसे उपन्यास जो मानव जीवन का यथार्थ चित्रण करें, इस नए युग ही में लिखे जा सकते थे। नज़ीर अहमद के उपन्यास त्रुटियों के होते हुए भी उस कला की बहुत सी विशेषताएं रखते हैं, क्योंकि पृष्ठ संख्या 202 उनमें पहली बार असंभव और अप्राकृतिक घटनाओं से बचने की चेष्टा की गई है। इस प्रकार उर्दू उपन्यास की नींव 1867 ईस्वी के लगभग पड़ गई थी। इसके पश्चात सरशार, शरर, सज्जाद हुसैन, मिर्जा रुसवा इत्यादि ने इस नींव पर विशाल भवन खड़ा कर दिया। पंडित रतन नाथ सरशार 1846 से 1902 लखनऊ के एक कश्मीरी परिवार में पैदा हुए थे। उन्होंने अरबी, फारसी और अंग्रेजी तीनों भाषाओं की शिक्षा प्राप्त की थी और उर्दू अपने शुद्ध रूप में उनकी मातृभाषा थी। पहले वह एक स्कूल में अध्यापक हो गए और अपने लेख विभिन्न पत्रिकाओं में भेजने लगे। फिर कुछ समय बाद वह लखनऊ की प्रसिद्ध पत्रिका अवध अखबार के संपादक बना दिए गए और उसी में उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक फसाने आज़ाद क्रमशः लिखी। वहाँ से अलग होने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में अनुवादक के रूप में कार्य किया, परंतु उनकी स्वच्छंदता एवं स्वतंत्रता प्रेमी स्वभाव ने उनको वहाँ टिकने न दिया और 1895 ईस्वी में वह हैदराबाद पहुँच गए। वहाँ उनका बड़ा आदर सत्कार हुआ। मदिरा सेवन की आदत ने उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाला, इसी ने उनको मृत्यु के द्वार तक पहुँचाया और 1902 ईस्वी में उनका अंत हो गया। सरशार को कविता से भी रुचि थी और लखनऊ के अच्छे कवियों में गिने जाते थे, परंतु आज वह उर्दू गद्य के बहुत बड़े लेखक होने के नाते ही इतिहास में बड़ा उच्च स्थान रखते हैं और लोग उनकी काव्य रचनाओं से अपरिचित हैं। वह अत्यंत तीव्र बुद्धि और व्याकुल स्वभाव के व्यक्ति थे। कोई काम एकदम से जमकर नहीं करते थे, इसलिए उनके लेखों में कहीं कहीं ढीलापन पाया जाता है। मदिरा के बाहुल्य ने उनको हर वस्तु की ओर से बेपरवाह बना दिया था। इसका प्रभाव केवल उनके जीवन पर ही नहीं, उनकी रचनाओं पर भी पड़ा। उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन उसका कुछ ही अंश महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्होंने कुछ पुस्तकों के अनुवाद भी किए हैं, किंतु अधिकतर मौलिक रचनाएं ही करते थे, जिनमें से यह प्रसिद्ध है फसाने आजाद, जामे सर शार, सैरे को हजार, कामिनी, बिछड़े दुल्हन, पी कहाँ, कुड मधुम। उन्होंने अल्फ लैला का अनुवाद भी किया और डान क्विक जोट को खुदाई फौजदार के नाम से उर्दू में परिवर्तित किया। सच यह है कि जो ख्याति फसाने आजाद को प्राप्त हुई और कई हजार पृष्ठों की पुस्तक होने पर भी जिस उल्लास से वह पढ़ी गई, वैसी विरला ही कोई पुस्तक पढ़ी गई होगी। जिस समय सरशार ने अवध अखबार के संपादन का भार लिया था, उन्होंने अपनी पत्रिका में यह कथा लिखना आरंभ किया। इस संबंध में ना तो उन्होंने बहुत विचार करके किसी उपन्यास की रूपरेखा तैयार की थी और ना वह यह जानते थे कि यह कथा फैल कर लगभग 4,000 पृष्ठ घेर लेगी। उन्होंने लखनऊ के उस जीवन का चित्रण किया था जो वहाँ की नवाबी के मिटने के बाद एक परंपरा के रूप में जीवित था। वह इस जीवन को आदि से अंत तक जानते थे। प्रत्येक श्रेणी के पृष्ठ संख्या 203 लोगों से परिचित थे, सबके बातचीत के ढंग जानते थे, इसलिए उन्होंने बड़ी कलाकारी से ऐसे चित्र खींच दिए हैं जो उस सभ्यता के मूल्यांकन में बहुत सहायक हैं। सरशार पर सर्वेंटीज का इतना गहरा प्रभाव था कि उन्होंने अपनी सभी बड़ी बड़ी पुस्तकों में इस प्रभाव के चिन्ह छोड़े हैं। फसाने आजाद के पात्र उसी प्रकार जीवन से बिगड़े हुए चित्र हैं जैसे कार्टून में मिलते हैं, लेकिन उनका विवरण पाठक को यथार्थ तक ले जाता है। 4 भागों में लिखी हुई यह कथा कुछ पृष्ठों में बयान की जा सकती है, परंतु उसका बहुत सा अंश ऐसा है कि कहानी का भाग न होते हुए भी अत्यंत आवश्यक है। इसका अर्थ यह है कि यदि वह भाग उसमें से निकाल दिया जाए तो फसाने आजाद का सारा चमत्कार समाप्त हो जाए। इसको संक्षिप्त रूप में प्रेमचंद ने हिंदी में प्रकाशित किया था, परंतु मूल रचना में भाषा का जो मजा है वह हिंदी की साधारण शैलियों में जीवित नहीं रखा जा सकता। यह बात स्वयं सरशार की किसी दूसरी पुस्तक में नहीं, जामे सरशार और सैरे को हसार भी पढ़ने योग्य है, लेकिन उनका अभाव भी यही है कि अच्छे उपन्यासों की भांति उनका प्लाट गठा हुआ नहीं है। सरशार एक बहुत बड़े कलाकार और जीवन के बहुत बड़े मर्मज्ञ थे, परंतु उनका चमत्कार यह है कि वह अपने मनोभावों को कहानी में उभरने नहीं देते, और यह अनुमान लगाना कठिन हो जाता है कि वह उस सभ्यता की किन मूल विशेषताओं को पसंद करते थे और किन के मिटने का उन्हें दुख न था। इतना अवश्य जान पड़ता है कि वह पुराने रंग ढंग को मिटाना और नए जीवन का स्वागत करना चाहते थे। भाषा पर इतना अधिकार रखने वाले उर्दू के बहुत कम लेखक हुए हैं। इस युग के दूसरे उपन्यासकार मौलाना अब्दुल हलीम शरर 1860 से 1926 ईस्वी हुए, उन्होंने लखनऊ में जन्म लिया था और अभी केवल 9 वर्ष के थे कि अपने परिवार के संग कलकत्ता चले गए। उनके घर के लोग अवध के अंतिम बादशाह वाजिद अली शाह के यहाँ मटिया बुर्ज में रहते थे। शरर ने वहीं अरबी फारसी की शिक्षा प्राप्त की, थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी सीख ली थी और वहीं उनको कविताएं रचने और लेख लिखने का भी शौक हो गया। लगभग 20 वर्ष की आयु में वह लखनऊ आए और यहाँ भी अपनी शिक्षा का सिलसिला जारी रखा। उस समय अवध अखबार का बड़ा जोर था। शरर ने भी अपने साहित्यिक निबंध उसी में लिखे और थोड़े ही समय में दूर दूर तक उनका यश फैल गया। आरंभ ही से वह एक प्रकार का काव्यमयी गद्य लिखते थे। यह शैली उर्दू के लिए एक प्रकार की नवीनता रखती थी, इसीलिए शीघ्र ही उन पर लोगों की आंख पड़ने लगी। थोड़े ही समय में उन्होंने इस ढंग को और प्रवाहपूर्ण बना दिया और साधारणतः उर्दू के लेखक उसी शैली में लिखने लगे। 1887 ईस्वी में उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक दिलगुदाज का प्रकाशन आरंभ किया और अपने उपन्यासों के अध्याय क्रमशः उसमें लिखने लगे। कुछ ही समय में यह एक लोकप्रिय पत्रिका बन गई और शरण ने अपने बहुत से उपन्यास और पृष्ठ संख्या 204 सहस्त्रों निबंध उसी में प्रकाशित किए। शरण को मुसलमानों के इतिहास से भी गहरा लगाव था और वह कभी कभी ऐतिहासिक पुस्तकें भी लिखते रहते थे। 1891 ईस्वी में वह हैदराबाद गए और वहीं से 15 मास के लिए एक रईस के साथ इंग्लैंड गए। वहां उन्होंने फ्रांसीसी भाषा सीख ली। हैदराबाद वापस आए और कई वर्ष तक हैदराबाद और लखनऊ का चक्कर लगाते रहे, यहाँ तक कि 1904 ईस्वी में अस्थायी रूप से लखनऊ चले आए और मृत्यु के समय तक यहीं रहे। मौलाना शरण ने लगभग 65 साल की आयु में इतना लिखा कि बहुत कम लेखक उनका मुकाबला कर सकते हैं। उन्होंने 9 ऐसे साप्ताहिक और मासिक पत्र निकाले जिनमें कुछ कम और कुछ ज़्यादा समय तक जीवित रहे। उन्होंने छोटी बड़ी 102 पुस्तकें लिखीं जिनमें अधिकतर उपन्यास ही हैं। इनके अतिरिक्त उनके निबंधों के 8 भाग अलग प्रकाशित हुए हैं जिनमें साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक और कल्पनात्मक विषयों पर लेख एकत्र कर दिए गए हैं। शरण के अधिकतर उपन्यास मुसलमानों के प्राचीन जीवन से संबंध रखते हैं जिनमें मुसलमानों की वीरता, उदारता और धार्मिक दृढ़ता के चित्रों को प्रचार की दृष्टि से प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार उनकी दृष्टि में संकीर्णता झलकती रहती है। शरण के अधिकतर उपन्यास एक ही ढंग के और एक ही शैली में लिखे हुए मिलते हैं। कभी-कभी तो ऐसा जान पड़ता है कि यदि एक उपन्यास के पात्र दूसरे में रख दिए जाएं तो कोई बड़ा अंतर न होगा। नवयुवक और अनुभव रहित रोमानी स्वभाव रखने वालों के लिए उनके हल्के फुल्के उपन्यासों में आनंद का बड़ा सामान मिल सकता है, परंतु उपन्यास को जीवन के मूल आदर्शों और बड़े संघर्षों का चित्रण करने वाला साहित्यिक रूप मानने वालों को उनके यहाँ बहुत कमी मिलेगी। उनके प्लाट ढीले, उनके पात्र सपाट और उनका उद्देश्य साधारण होता है। उनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास फिरदौसे वरी है। इसके अतिरिक्त अय्यामे अरब, हुस्न का डाकू, मंसूर मोहना, ज्वाले बगदाद प्रसिद्ध है। उन्होंने बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास दुर्गेश नंदिनी का अनुवाद भी उर्दू में किया था। शरण ने कुछ नाटक भी लिखे, परंतु शहीद वफा के सिवाय उनको किसी में सफलता प्राप्त न हुई। उन्होंने कुछ कविताएं भी लिखीं, परंतु लोग उनको भूल चुके हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर देखा जाए तो प्रतीत होगा कि शरण एक साधारण लेखक थे और उनकी रचनाओं का थोड़ा ही भाग समय की कसौटी पर पूरा उतरेगा। साथ ही वह लखनऊ के बड़े प्रभावशाली और आदरणीय व्यक्तियों में गिने जाते थे और जब तक जीवित रहे यहाँ की साहित्यिक चहल पहल के केंद्र बने रहे। यह बात पिछले अध्याय में कही जा चुकी है कि उस समय उर्दू में बहुत से समाचार पत्र और पत्रिकाएं निकल रही थीं। इनका भी साहित्यिक महत्व है। 1877 ईस्वी में उर्दू की सुप्रसिद्ध हास्य प्रधान साप्ताहिक अवध पंच निकला जिसके पहले संपादक मुंशी सज्जाद हुसैन थे। थोड़े ही समय में उसके चारों ओर बड़े अच्छे अच्छे पृष्ठ संख्या 205 लेखकों का एक ऐसा समूह एकत्र हो गया जो शायद ही किसी पत्रिका को मिला हो। राजनीतिक दृष्टि से अवध पंच बड़ा प्रगतिशील था और हंसी मजाक में वह अंग्रेजी राज के दमन और आर्थिक लूटमार पर कड़ी चोटें करता था। कांग्रेस के आदर्शों को अपनाता और राष्ट्रीयता के आंदोलनों का साथ देता था। साहित्यिक क्षेत्र में अलबत्ता वह किसी प्रकार की नवीनता को उचित नहीं समझता था। अतः जब मौलाना हाली ने नई कविता का शंख फूका तो अवध पंच उसके पीछे पड़ गया। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं में से बिरली ही कोई ऐसी होगी जिन पर उस समय राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से हास्य रस में डूबे हुए लेख ना लिखे गए हों। उसकी भाषा लखनऊ के बोलचाल की भाषा थी और अवध पंच के सभी लेखक भाषा व्यवहार में निपुण थे। इसका परिणाम यह हुआ कि अवध पंच द्वारा उर्दू में हास्य प्रिय साहित्य का एक बड़ा कोष एकत्र हो गया और यह बात विश्वस्त रूप में कही जा सकती है कि वास्तविक रूप में उसी समय से उर्दू में ऐसे गद्य साहित्य की परंपरा स्थापित हुई है। अवध पंच के लेखकों में यह बहुत प्रसिद्ध हैं, पंडित त्रिभुवननाथ, हजर, मिर्जा मच्छू बेग, सितम जरीफ, नवाब सैयद मोहम्मद आजाद, मुंशी ज्वाला प्रसाद वर्ग, मुंशी अहमद अली, अकबर, इलाहाबादी, पंडित रतन नाथ सरसार, पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त, इनमें से प्रत्येक व्यक्ति ने साहित्य जगत में विशिष्ट स्थान ग्रहण किए। इनमें से कुछ का उल्लेख किसी न किसी संबंध में हो चुका है। अवध पंच के संपादक मुंशी सज्जाद हुसैन 1856 से 1915 लखनऊ में पैदा हुए और यहीं शिक्षा प्राप्त की। इंटरमीडिएट तक अंग्रेजी भी पढ़ी। कुछ दिनों तक सैनिकों को उर्दू पढ़ाने का कार्य करते रहे, परंतु उसमें मन न लगा और 1877 ईस्वी में उन्होंने अवध पंच निकाला। थोड़े ही समय में यह पत्रिका भारत की प्रमुख पत्रिकाओं में गिनी जाने लगी। सज्जाद हुसैन 1887 ईस्वी में कांग्रेस में सम्मिलित हुए और सदैव उसके आदर्शों का प्रचार अपने व्यंग्य प्रधान पत्र में करते रहे। निबंधों के अतिरिक्त उन्होंने कई उपन्यास भी लिखे, जिनमें हाजी वगलोल, काया पलट और अहम कुल लजीन प्रसिद्ध हैं। यह सबके सब हास्य रस से भरे हुए हैं। इनमें हाजी वगलोल सबसे महत्वपूर्ण है और शरसार के फसाने आजाद से मिलता जुलता है। उन्होंने भी लखनऊ की सभ्यता के विदूषक अंगों को बड़ी निपुणता से प्रस्तुत किया है। उनकी भाषा लखनऊ की बोलचाल की भाषा है और साधारण कहावतें, कथा और मुहावरे ऐसे उचित ढंग से उनके वाक्यों में प्रयुक्त होते हैं कि सीधी सादी बातों में भी मजा पैदा हो जाता है। जब उर्दू के हास्य प्रधान गद्य साहित्य का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके आरंभ करने वालों में सज्जाद हुसैन को भी एक उच्च स्थान मिलेगा। उस समय तक सभी ऐसे लिखने वाले कोई विशेष सामाजिक दृष्टिकोण नहीं रखते थे, परंतु किसी न किसी रूप में व्यक्ति की त्रुटियों को दिखाकर सुधार की ओर संकेत अवश्य करते थे। वह बहुत स्पष्ट रूप से किसी नई चेतना का पता नहीं देते। फिर भी पृष्ठ संख्या 206, सरशार और सज्जाद हुसैन दोनों के यहाँ उस संघर्ष के चित्र मिलते हैं जो नए और पुराने के बीच जारी था। इस युग के एक और महान उपन्यासकार मिर्जा मुहम्मद हादी रुसवा 1858 से 1931 ईस्वी हैं। यह केवल एक आकस्मिक बात ही थी कि उन्होंने जिस एक उचाट हृदय से चार छह उपन्यास लिखे थे, वही उनको उर्दू साहित्य के इतिहास में विशिष्ट गौरवपूर्ण पद दिलाने का माध्यम बने। नहीं तो वह जितने बड़े विद्वान और ज्ञानी थे, वैसे सैकड़ों वर्ष में कहीं तो एक ही पैदा होते हैं। वह बहुत सी भाषाएं जानते थे और कई विद्वानों में बिना किसी शिक्षा व सहायता के स्वयं अपने परिश्रम से निपुणता प्राप्त की थी। तर्कशास्त्र और दर्शन शास्त्र से उन्हें विशेष रुचि थी। ज्योतिष और गणित के वह सच्चे प्रेमी थे। पूरब और पश्चिम की सभी विद्याओं से परिचित थे और उनके गहरे अध्ययन का परिणाम यह था कि सभी विषयों पर अधिकारपूर्ण बात कह सकते थे। धर्म के संबंध रखने वाले शास्त्रों को उन्होंने गहरी दृष्टि से पढ़ा था और बहुत सी धार्मिक पुस्तकें दार्शनिक दृष्टिकोण से लिखी जो अब तक प्रकाशित नहीं हो सकी हैं। मिर्जा रुश्वा ने प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता से प्राप्त की और थोड़े ही समय में बहुत कुछ सीख लिया। अंग्रेजी में इंटरेस्ट तक पढ़कर इंजीनियरिंग की परीक्षा पास की और कुछ दिन नौकरी भी की, लेकिन उन्हीं दिनों में उनको केमिस्ट्री से दिलचस्पी पैदा हो गई, इसलिए नौकरी छोड़ दी और घर का सब कुछ बेचकर इंग्लैंड से वैज्ञानिक यंत्र मंगा लिए। बीए का इम्तिहान भी प्राइवेट पास कर लिया और अमेरिका से एक पीएचडी की डिग्री भी मंगा ली। कुछ समय तक लखनऊ के स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाते रहे, लेकिन उनका सारा समय लिखने पढ़ने में बीतता था। वह एक बड़े अच्छे कवि थे और संगीत शास्त्र से भी भली भांति परिचित थे। उन्होंने दर्शन शास्त्र, तर्क शास्त्र, धर्म शास्त्र, इत्यादि पर बहुत सी रचनाएं की, परंतु साहित्य की दृष्टि से उनकी कुछ कविताएं और उपन्यास ही महत्व रखते हैं। कविताओं में मुरक्कई लैला, मजनू और मसनवी, उम्मीदों विम प्रसिद्ध है, और उपन्यासों में उमराव जान अदा, शरीफ ज़ादा और जाते शरीफ सर्वश्रेष्ठ हैं। उन्होंने अपनी अंतिम आयु में हैदराबाद में नौकरी कर ली थी और वहाँ बहुत सी पुस्तकों का अनुवाद भी किया, परंतु उनको उनके ज्ञान और पांडित्य ने साहित्य में जगह नहीं दिखाई है, बल्कि उनके उपन्यासों ने। शरीफ ज़ादा नामक उपन्यास में उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति की जीवन कथा लिखी है जो बिल्कुल उन्हीं के स्वभाव से समानता रखता है। बहुत से लोगों का विचार है कि यह स्वयं उनकी आत्मकथा है। यह कहानी ऐसे सरल और रोचक ढंग से लिखी गई है कि इसमें कहीं किसी प्रकार की कृत्रिमता नहीं दिख पड़ती। उनके दूसरे उपन्यास जाते शरीफ में उच्च श्रेणी के लोगों की जीवन कथा इस प्रकार लिखी गई है कि गदर के बाद अवध की दुर्दशा का चित्र सामने आ जाता है। उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना पृष्ठ संख्या 207 उमराव जान अदा है, जिसमें एक वेश्या की आत्मकथा उसी के मुख से बयान की गई है। उस समय तक लोग इस विषय को अपनाते डरते थे और साहित्य के विशाल और पवित्र भवन में उसे लाते हुए संकोच होता था। हालांकि वह सामंती युग में जीवन के बनाने और बिगाड़ने में प्रेरणा स्रोत का रूप धारण कर सकी थी। रसुआ ने एक वेश्या के मुख से यह सब बातें कहलाई हैं जो उसको जीवन के एक विशेष संकट में फंसा देती हैं। ऐसा जान पड़ता है कि रसुआ की दृष्टि में समाज सुधार का कोई स्पष्ट उद्देश्य ना था, परंतु जिस लखनऊ को वह जानते थे उसके जीवन के सभी अंगों को एक सच्चे कलाकार की तरह हमारे सामने ला खड़ा किया, और यह सब कुछ ऐसे महज ढंग से हो जाता है कि हम ना सिर्फ उन चित्रों में खो जाते हैं, बल्कि हमें स्वयं यह पता ही नहीं चलता कि इस चित्रण से रुसवा क्या काम लेना चाहते हैं। इस बात पर सभी आलोचक सहमत हैं कि वास्तविकता की दृष्टि से यह उर्दू के महत्वपूर्ण उपन्यासों में है। एक वेश्या के चित्र के पीछे प्रत्येक वर्ग के लोग खड़े दिख पड़ते हैं और वह लखनऊ हमारे सामने आ जाता है जो 19वीं शताब्दी के अंत में दम तोड़ रहा था। उस समय की सभ्यता, साहित्यिक जीवन, सामाजिक और धार्मिक स्थिति, देहातों की आर्थिक दुर्दशा और लूटमार के अतिरिक्त प्रेम भावना के अनुपम चित्र भी इस उपन्यास में मिलते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह एक नारी के अंदर वेश्या और घरेलू औरत का वह संघर्ष है जो कलाकार को प्रेरणा देता है। अंत में रुसवा ने एक उपदेशक और प्रचारक का रूप धारण कर लिया, और वही इस उपन्यास का दुर्बल भाग है। वैसे यह पूरा उपन्यास किसी विशेषज्ञ चित्रकार की रचित कलाकृति का चमत्कार रखता है, जिसमें जीवन अपनी व्याकुलता और उद्विग्नता के साथ देखा जा सकता है। रुसवा ने एक काव्यबद्ध नाटक भी लिखा। उनका विचार था कि इस प्रकार वह यूरोपियन नाटकों की भांति उर्दू में भी काव्यबद्ध नाटक प्रचलित कर सकेंगे, लेकिन इसमें उन्हें अधिक सफलता नहीं प्राप्त हुई। उन्होंने लैला मजनू की प्रसिद्ध प्रेम कहानी को नाटक का रूप दिया, इसलिए उनमें आनंद और मनोरंजन अवश्य प्राप्त होता है, परंतु उर्दू में गद्य में लिखे हुए नाटकों का जितना स्वागत किया गया उतना इसका ना हो सका। इस समय के दूसरे उपन्यासकारों और कहानी लेखकों में मौलाना राशिदुल खैरी का भी उच्च स्थान है, जिन्होंने डॉक्टर नज़ीर अहमद के बनाए मार्ग के अनुकरण को ही आदर्श माना और नारी जीवन के सुधार को अपना उद्देश्य बनाकर बहुत सी करुणाजनक कहानियाँ लिखीं। उनके यहाँ दुख और शोक का इतना वर्णन होता था कि उनको मुसव्विरे गम, दुख का चित्रकार कहा जाने लगा। उनकी दृष्टि में भी कोई विशेष दार्शनिक गहराई नहीं थी, परंतु वह जीवन की साधारण दुर्घटनाओं का उल्लेख इस प्रकार से करते थे जिससे करुणा का एक असाधारण वातावरण तैयार हो जाता था। उनकी भाषा दिल्ली की शुद्ध और सरल बोलचाल की भाषा थी, और पृष्ठ संख्या 208 मुसलमान मध्यम वर्ग के दुखांत और पारिवारिक जीवन के कलह को बड़ी जानकारी के साथ प्रस्तुत करके वह एक लोकप्रिय लेखक बन गए थे। राशिदुल खैरी ने इसी उद्देश्य से दो पत्रिकाएं भी निकाली थी जिसमें अधिकतर नारी वर्ग के संबंध में निबंध और कहानियाँ होती थी। इन दोनों पत्रिकाओं में इस्मत बहुत प्रसिद्ध है, जो उनकी मृत्यु के बाद भी निकलती रही। उन्होंने कुछ ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखे, छोटी छोटी कहानियों के संग्रह भी तैयार किए और बहुत से उपन्यास लिखे, जिनमें से सुबह जिंदगी, शामे जिंदगी, शवे जिंदगी, मोहे अजम, नौबते पंजरोजा, मना जिलुस सायरा, उरुसे करवला बहुत प्रसिद्ध हैं और उनके कई कई संस्करण छप चुके हैं। अब भी मध्यम वर्ग के मुसलमान महिलाएं उनके उपन्यासों को बड़े उत्साह से पढ़ती हैं। इस संक्षिप्त इतिहास में दूसरे उपन्यासकारों का उल्लेख नहीं किया जा सकता, केवल उनके नाम दिए जाते हैं, जैसे मोहम्मद अली तबीब, ज्वाला प्रसाद वर्ग, अब्बास हुसैन होश, शाद अजीमाबादी, कारी सरफराज हुसैन, मिर्जा मोहम्मद सईद, पंडित किशन प्रसाद कौल इत्यादि। इनमें से प्रत्येक ने एक आध उपन्यास ऐसे लिखे हैं जिनका साहित्यिक महत्व है और जिनको कला की दृष्टि से उच्च स्थान दिया जा सकता है, परंतु इस जगह उनके वर्णन का अवसर नहीं है। जैसा कि संकेत किया जा चुका है, उर्दू नाटक का आरंभ 19वीं शताब्दी के मध्य में अमानत की इंदर सभा के साथ हो चुका था, पर कुछ समय तक नाटक नहीं लिखे गए। मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद ने अकबर के नाम से एक नाटक अवश्य लिखा जो पूरा ना हो सका, लेकिन 19वीं शताब्दी के अंत में जब भारतवर्ष में व्यापार की रुचि बढ़ी और मनोरंजन द्वारा लाभ उठाने का विचार पैदा हुआ, तो बम्बई के कुछ पारसियों ने अंग्रेजी रंगमंच से प्रभावित होकर नए ढंग की नाटक कंपनियां बनाई। भारत में नौटंकी, रहस्य और लीला की परंपराएं चल रही थीं, जो एक बिगड़े हुए रूप में प्राचीन संस्कृत नाटकों और रंगमंचों की नकल थी। अब जो नए मंच बने और नाटकों की नई मंडलियां स्थापित हुई, वह देश की परंपराओं से नहीं, यूरोप के विचारों से प्रभावित थीं। यह बात स्पष्ट है कि नाटक और मंच दोनों एक दूसरे के साथ साथ उन्नति करते हैं। यहाँ जो मंच बना वह केवल रुपया कमाने के लिए था और उसकी जड़ देश की भूमि में दूर तक फैली हुई नहीं थी। इसीलिए इस समय जो नाटक लिखे गए वह या तो विदेशी नाटकों और कथाओं पर आधारित थे या भारतीय जीवन का उल्लेख करते थे, तो बड़े साधारण ढंग से। इन नाटक कंपनियों में रौनक बनारसी, हुसैन मियाँ जरीफ, मोहम्मद अब्दुल्ला मिर्जा, नज़ीर बेग, तालिब बनारसी, अहसन लखनवी, पंडित बेताब और गुलाम अली दीवाना इत्यादि ने ड्रामे लिखे। विनायक प्रसाद तालिब ने अंग्रेजी के कई नाटकों को उर्दू में अपना लिया था। अहसन लखनवी ने शेक्सपियर के ड्रामों को उर्दू नाटक के रूप में ढाल लिया। कहीं कहीं उन्होंने अनुवाद का प्रयास भी किया है, लेकिन अधिकतर वह नाटक की कहानी को पृष्ठ संख्या 209 हिंदुस्तानी बनाकर लिख देते हैं। उनके ड्रामों में जान और रस का प्रभाव है। पंडित नारायण प्रसाद बेताब ने हिंदू धर्म से संबंध रखने वाली कहानियों को नाटकों में चलाया और अहसन और तालिब की भांति उन्होंने भी उर्दू नाटक को बहुत ऊपर उठाया। 1920 ईस्वी तक जो नाटक लिखे गए थे उनमें साहित्य की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता था, वह केवल मंच पर मनोरंजन पैदा करने के उद्देश्य की पूर्ति करते थे। नाटकों में कोई सामाजिक समस्या विरला ही जगह पाती थी। देश प्रेम या और इसी प्रकार के नैतिक गुणों की ओर बहुत कम ध्यान दिया जाता था। प्रेम के भोंड़े और भद्दे खेल खेले जाते थे और यदि कभी नैतिक विषय आ जाते थे तो उसको बड़े कृत्रिम और साधारण ढंग से प्रस्तुत किया जाता था। गानों पर बहुत जोर दिया जाता था और मंच के उन्नतिशील न होने के कारण बहुत से दृश्य अप्राकृतिक रूप से दिखा दिए जाते थे, परंतु धीरे धीरे अल्फ्रेड और एल्फिस्टन कंपनियों ने अच्छे मंच बनाए और उसी समय नाटक के अच्छे लेखक भी पैदा हुए। अल्फ्रेड नाटक कंपनी में आगा हर्ष काश्मीरी नामक एक अभिनेता थे। उन्होंने नाटक लिखना आरंभ किया और थोड़े ही समय में उर्दू के सबसे अच्छे नाटककार स्वीकार किए जाने लगे। उन्होंने भी शेक्सपियर के नाटकों को हिंदुस्तानी बनाकर प्रस्तुत किया और पौराणिक कथाओं को नाटक का रूप दिया। वह उर्दू, फारसी और अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी भी भली भांति जानते थे, इसलिए वह हिंदी शब्द और हिंदी गीत भी बड़े उचित ढंग से अपने नाटकों में लाते थे। उनके कुछ नाटक उर्दू में हैं, कुछ हिंदी में और कुछ मिलीजुली भाषाओं में। उन्होंने सामाजिक विषयों को भी नाटकों में जगह दी। उनके नाटकों में सफ़ेद खून, तुर्की हूर, यहूदी की लड़की, खूबसूरत बला, आँख का नशा, औरत का प्यार, सूरदास, विलवा मंगल, श्रवण कुमार और सीता वनवास अधिक प्रसिद्ध हैं। उनके नाटक अब तक बड़े उत्साह से देखे जाते हैं। इसमें संदेह नहीं कि एक नाटककार की हैसियत से उन्होंने एक नई शैली की नींव डाली, जिस पर बाद में और लेखक आगे बढ़े। रंगमंच के अतिरिक्त तो कुछ नाटक केवल साहित्य की दृष्टि से लिखे गए हैं। उनमें सरल लखनवी, अब्दुल माजिद दरियावादी, पंडित कैफी इत्यादि के नाटक प्रसिद्ध हैं। उमराव अली और किशन चंद जीवा ने राजनीतिक विषयों पर नाटक लिखे। आगाहस्त्र के शिष्यों में हकीम अहमद सुजा की कृतियाँ नाटक कंपनियों में बड़ी लोकप्रिय सिद्ध हुई। डॉक्टर आबिद हुसैन प्रोफेसर, मुजीब डॉक्टर इश्तियाक हुसैन, मोहम्मद उमर नूर इलाही, आरजू लखनवी इत्यादि ने भी अच्छे अच्छे नाटकों की रचना की। इम्तियाज अली ताज ने अपना सर्वश्रेष्ठ नाटक अनारकली भी साहित्यिक दृष्टि से लिखा और बहुत से आलोचक उसको उर्दू का सबसे अच्छा नाटक समझते हैं। लगभग 35 वर्ष में एकांकी नाटकों का रिवाज भी हो गया है और उसके लिखने वाले बहुत हैं। एकांकी नाटकों में जीवन की सभी समस्याओं को उसी प्रकार पृष्ठ संख्या 210 प्रस्तुत किया जा रहा है जिस प्रकार कहानियों में। इनमें से कुछ नाटक रेडियो के लिए भी लिखे गए हैं और कुछ केवल साहित्यिक रूप रखते हैं। मंच पर दिखाने के लिए उनमें बड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा। सआदत हसन मंटू, राजेंद्र सिंह बेदी, कृष्णचंद्र, उपेंद्र नाथ अश्क, ख्वाजा अहमद अब्बास ने ऐसे नाटक लिखे हैं जिनमें वर्ग शोषण, सामाजिक अन्याय, भूख, बेजोड़, विवाह, पूंजी और श्रम का संघर्ष, स्वतंत्रता युद्ध और जीवन की असंख्य समस्याएं बड़ी सुंदरता और कलात्मक निपुणता के साथ प्रस्तुत की गई हैं। किंतु इनका उल्लेख प्रगतिशील लेखकों के सिलसिले में होना चाहिए। इस युग में पत्रिकाओं की चर्चा अधिक बढ़ रही थी और उनका स्तर भी ऊंचा हो रहा था। राजनीतिक वाद विवाद के अतिरिक्त साहित्यिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक और आर्थिक विषयों पर लेख वर्तमान युग की आवश्यकताओं के अनुकूल प्रकाशित होते थे। सर सैयद के समय से यह क्रम चला था और समय के साथ साथ और अधिक व्यापक होता जा रहा था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हसन निजामी, मौलाना मोहम्मद अली, जफर अली खां इत्यादि ऐसे पत्रकार हैं जिनका साहित्य में बड़ा ऊंचा स्थान है। मौलाना आज़ाद 1889 ईस्वी से 1958 तक ने अल हिलाल और अल वलाग के नाम से जो दो अखबार निकाले, उन्होंने एक नए ढंग की पत्रकारिता को जन्म दिया। इसी प्रकार मौलाना मोहम्मद अली ने अंग्रेजी और उर्दू में जो समाचार पत्र निकाले, उनकी चर्चा भी साहित्य के हरे इतिहास में अवश्य की जाएगी। मौलाना आज़ाद की गद्य अरबी और फारसी शब्दों से भरी हुई है। उनमें अलंकारों और उपमाओं का बाहुल्य प्रयोग होता है। उनमें कविता की रंगीनी पाई जाती है और उससे ऐसे बल और ऐसी शक्ति का उद्भव होता है कि पढ़ने वाला उसके प्रवाह में बह जाने पर विवश होता है। वह जितने बड़े विद्वान थे, उतने ही अच्छे वक्ता और लेखक भी थे। उन्होंने कई पुस्तकें उर्दू में लिखी हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण हैं। उनकी प्रारंभिक रचनाओं में तज़किरा नामक पुस्तक बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें उन्होंने अपने पूर्वजों का हाल बड़े रोचक ढंग से लिखा है। कुरान शरीफ का जो अनुवाद टीका सहित उन्होंने किया है, उनके व्यापक ज्ञान का प्रतीक कहा जा सकता है। और जो व्यक्ति भी इस्लामी विचार और ज्ञान का अध्ययन करना चाहेगा, उसको इस पुस्तक से बड़ी सहायता मिलेगी। 1942 ईस्वी के बंदी काल में उन्होंने कुछ पत्र अपने एक मित्र के नाम लिखे और लिख कर रखते गए। वह गुब्बारे खातिर के नाम से प्रकाशित हुए हैं और एक दफ़ा फिर उर्दू के पाठकों ने गद्य की रचना की वह झलक देखी जो उनकी प्रारंभिक रचनाओं में पाई जाती थी। राजनीति ने उन्हें अपना बना लिया था, पर उससे समय निकाल कर जब कुछ लिख देते थे, वह साहित्य का एक भाग बन जाता था। मौलाना मुहम्मद अली कवि भी थे और लेखक भी, परंतु उन्होंने विशेष रूप में कोई रचना नहीं छोड़ी है। उनके लेखों में पत्रों के कई संग्रह प्रकाशित किए गए हैं, जिनमें हमें अच्छा गद्य और अच्छा ज्ञान दोनों ही मिलते हैं। इसी प्रकार जफर अली खां पृष्ठ संख्या 211 ने भी पद्य और गद्य दोनों में बहुत कुछ लिखा है, और गद्य में विशेषकर उनकी अंग्रेजी पुस्तकों के अनुवाद बड़ा महत्व रखते हैं।